तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन तक, 7 रातों तक ये कृष्ण कथा सुनाई। और ये कृष्ण कथा इतनी अद्भुत थी कि 7 दिन तक कोई भी सोया नहीं, 7 दिन तक किसने कुछ खाया नहीं। हालांकि परीक्षित महाराज को श्राप इसलिए मिला था क्योंकि उनको प्यास लगी थी, प्यास में अज्ञानता में उन्होंने सर डाल दिया था एक ऋषि के गले में, परंतु 7 दिन तक अब वो प्यास भी उन्हें नहीं लगी। और जितने भी वहां पर और मुनिगण थे, हर लोक से, अलग अलग देशों से, अलग अलग लोगों से सब मुनिगण आए थे वहां पर और सब कृष्ण कथा सुन रहे थे, तो बिल्कुल अलग माहौल था। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, ओ किंग परीक्षित, हे परीक्षित, मेड दैट कृष्णा हु लिफ्टेड गोवर्धन एंड प्रोटेक्टेड ब्रजवासी बी प्लीज्ड विद ऑल ऑफ अस। हे परीक्षित महाराज, जिस कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और अपने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उस वर्षा से वो कृष्ण हम सबकी रक्षा करे। जस्ट लाइक कृष्णा प्रोटेक्टेड हिज पीपल फ्रॉम दैट रेन एंड लाइटनिंग सेंट बाय रैथफुल इंद्र, तो किस प्रकार से कृष्ण ने इंद्र की उस बारिश से, घमासान बारिश से, उस बिजली से अपने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की, कृष्ण के क्रोध से रक्षा की। May he protect you from lightning bolt, curse of Shringi's anger. तो तुम्हारे ऊपर भी एक lightning bolt, एक प्रहार हुआ है, वो है श्रृंगी के श्राप का। तो सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आज हम essence, हर वेद का essence, श्रीमद् भागवतम की कथा करेंगे। तो जब हम ये कथा सुन रहे हैं तो हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि इस भौतिक संसार का हर व्यक्ति श्रापित है। केवल परीक्षित महाराज को श्राप नहीं मिला था, इस भौतिक संसार में जो भी आया है उसके ऊपर श्राप लगा हुआ है और हर किसी के ऊपर एक तलवार टंगी हुई है जो कभी भी उसका गला काट सकती है। हमारी केवल यही कोशिश होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने आप को कृष्ण कथा में एब्सॉर्ब कर सके अपने आप को, और कृष्ण की प्रेजेंस को फील कर सके, महसूस कर सके कृष्ण कथा में। क्योंकि जो कृष्ण कथा है लिटरली लिटरेरी इनकार्नेशन है, भगवान का रूप है। तो ये कृष्ण कथा प्रारंभ हुई कि जो किंग ऑफ वेदर है इंद्र, जो हर मौसम के जो देवता है, वो अपने स्वर्ग लोक में बैठे थे अमरावती में। और अमरावती का क्योंकि हेवनली टाउन है, वहां का ऐश्वर्य बिल्कुल अद्भुत है। वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती, वहां पर सुंदर सुंदर स्त्रियां, हर प्रकार का यश, सब कुछ मिलता है। और इंद्र पूरी तरीके से ही वॉज सराउंडेड बाय वेल्थ, हर तरीके से वो धन से इतना भर चुका था कि वो ये भूल गया था कि वो भगवान का दास है, ही सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और ये भूलने के कारण क्या है, वो अंधा हो गया था, ब्लाइंड। हालांकि कृष्ण, क्योंकि जब हम इंद्र की बात करते हैं कि इंद्र अंधा हो गया था, तो ये बात हमें समझ नहीं आती क्योंकि इंद्र की कितनी आंखें हैं, 1000। तो ये आंखें होने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है जिसके नेत्र हैं वो देख सकता है कृष्ण को। कृष्ण, इंद्र की 1000 आंखें थी पर फिर भी वो अंधा था, वो देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि कृष्ण कौन है। वो अहंकार से इतना भर गया था, क्योंकि अहंकार से भरने का कारण ये था, उसको बहुत यश मिल रहा था, हर जगह उसको यश मिलता था, क्योंकि उसके देश में अमरावती में भी उसका गुणगान होता था और पृथ्वी लोक पर भी हर गांव, हर शहर उसकी भक्ति करता था। परंतु देखिए, कोई भी चीज अगर नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे हमें मिलती रहती है और एक दिन अगर वो छूट जाए तो वो उस व्यक्ति को समझ नहीं आता, क्योंकि उससे इतना अटैच्ड होता है वो। अगर किसी को आप मतलब किसी के आकर्षण को अपनी तरफ अगर खींचना है आपको, उसको 1 महीने तक कुछ ऐसी चीज खिलाइए जो उसको बहुत पसंद है और 1 महीने के बाद अचानक बंद कर दीजिए, उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, क्यों बंद किया आखिर, ऐसा क्या हो गया जो बंद कर दिया। तो जनरेशन से, कई कई पीढ़ियों से जो ब्रजवासी थे वो इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, परंतु एक बार की बात है जब कृष्ण 7 साल और 2.5 महीने के थे, 7 साल पर उनको मौका मिला था गैया चराने का, 7 साल 2.5 महीने के थे कृष्ण, जब उन्होंने एक प्लान बनाया, उनका प्लान क्या था, टू डिस्ट्रॉय प्लान ऑफ इंद्र। कृष्ण ने एक ऐसी योजना बनाई कि किस प्रकार से इंद्र की योजना को फेल किया जा सके। तो कृष्ण जब पहुंचे ब्रज में तो कृष्ण ने देखा कि बहुत तैयारी हो रही है, धूमधाम से यज्ञ की तैयारी हो रही है, हर कोई घर में भोग बना रहा है, 56 भोग बनाए जा रहे हैं। इंद्र गए अपने पिता के पास, उन्होंने पूछा पिता से कि पिताजी क्या बात है, ये किस चीज की तैयारी की जा रही है इतनी। तो नंद बाबा ने सोचा कि छोटा सा बच्चा, इसको क्या समझाऊंगा, कुछ भी बोलूंगा तो बहस करेगा उस पे। तो उन्होंने कहा जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं, बच्चा कुछ पूछता तो बेटे आप जाओ। तो नंद बाबा ने भी सोचा कि ठीक है कृष्ण को भेज दे आप जाओ, पर कृष्ण क्योंकि कृष्ण का स्वभाव थोड़ा हठी है तो कृष्ण जिद पे अड़ गए, नहीं बताइए आप मुझे क्या बात है, किस चीज की तैयारी की जा रही है। तो नंद बाबा ने समझाया उनको कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इंद्र की सेवा करते आ रहे हैं, इंद्र के लिए यज्ञ करते आ रहे हैं। परंतु जब कृष्ण ने ये सुना तो कृष्ण ने बहुत अलग अलग तर्क देने शुरू किए और कृष्ण ने समझाना शुरू किया नंद बाबा को कि हमें जरूरत नहीं है इंद्र की, हमें आज तक जो भी मिलता गया मिला है उसमें इंद्र का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंद्र का उसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, हम जो भी करते हैं मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिलता है, कर्म हमें मिलते हैं, कर्मों के कारण हमें उसका फायदा मिलता है, उसके साथ साथ हमारे पर ब्राह्मणों की कृपा है, हमारे पास गैया है, हमारे पास गिरिराज गोवर्धन है। कृष्ण नंद बाबा को और जितने आसपास ब्रजवासी खड़े थे सबको दिखाया कि देखिए यही तो गोवर्धन है गिरिराज, इस गोवर्धन की वजह से तो सब कुछ हमें मिल रहा है, जो भी यहाँ पर है उपस्थित, हमारी गाय यहाँ पर चरने के लिए जाती है, हमें लकड़ी यहाँ से मिलती है, सब कुछ यहाँ से मिलता है हमें, इतने सुंदर सुंदर झरने, सब कुछ हमें इस गोवर्धन से मिलता है, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें। जब नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा बहुत भयभीत हो गए, फियरफुल, उन्हें डर लग रहा था कि अगर हमने इंद्र की तपस्या नहीं की, इंद्र के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया तो हमारे साथ होगा क्या, कहीं इंद्र कुपित तो नहीं हो जाएगा, नाराज तो नहीं हो जाएगा। तो कृष्ण ने नंद बाबा को और सभी ब्रजवासियों को प्रोत्साहन दिया, आप घबराइए मत, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे, ये गोवर्धन पर्वत ये हमारी रक्षा करेगा। और ब्रजवासी क्योंकि कृष्ण के इतने अच्छे भक्त हैं, कृष्ण के अच्छे इतने अच्छे सेवक हैं कि ब्रजवासी कृष्ण से कुछ बहस नहीं करते। कृष्ण जब बोला ब्रजवासियों को कि हम गोवर्धन की भक्ति करेंगे तो ब्रजवासी ने बोला कि ठीक है हम तैयार हैं, कृष्ण अब आप हमें बताइए, इंस्ट्रक्ट कीजिए कैसे शुरू करना है। तो कृष्ण ने ब्रजवासियों को बोला कि ठीक है पहले ब्राह्मणों को बुलाओ और ब्राह्मण जो भी है स्वस्ति वचनम करेंगे, स्वस्ति वचनम इन्वोकेशन प्रेयर्स है, हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमें ब्लेसिंग चाहिए होती है, कृपा चाहिए होती है और कृपा के बेसिस पे ही हम सब कुछ कर पाते हैं। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचनम शुरू किया, स्वस्ति नो गोविंदः, स्वस्ति नो अच्युतानंदो, स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर् ददातु, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचन शुरू किया और ये स्वस्ति वचन चलता गया। तो क्योंकि परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे तो परीक्षित महाराज बहुत घबरा रहे थे कि ये कैसे क्या हुआ, क्योंकि कृष्ण ने क्या किया, इंद्र के लिए जो यज्ञ होता था उस यज्ञ को रुकवा दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी इंसल्ट थी इंद्र के लिए, आप सोचिए ना, मान लीजिए व्यास आसन में कोई व्यक्ति बैठा है प्रवचन के लिए और एक भक्त आए हार लेके और जो व्यक्ति व्यास आसन में बैठा है उसको पहनाने की जगह एक चींटी को पहना दे, जमीन पे जो चींटी थी उसको पहना दे हार, तो जो व्यास आसन में व्यक्ति बैठा उसके लिए कितना इंसल्टेड फील होगा, कैसा लगेगा उसको, है ना, कितनी बड़ा मतलब बेइज्जती कर दी उसकी। तो ऐसा ही फीलिंग परीक्षित महाराज घबरा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि इंद्र की जो अहंकार है उस पर ठेस पहुंचेगी अब, तो परीक्षित महाराज बहुत घबरा रहे थे। तो आगे चलते हुए कृष्ण आगे बढ़े और कृष्ण की सुंदरता के लिए बताया गया कि कृष्ण ने बहुत ही सुंदर मुकुट पहना हुआ था, सुंदर मोर पंख लगाया हुआ था, बहुत ही सुंदर टर्बन पहना हुआ था, सुंदर सुंदर बालियां कृष्ण के कानों में लटक रही थी, झूम रही थी। और कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से बोला, विद वेरी स्वीट वॉइस कृष्ण ने बोला कि जितना भी पैराफर्नेलिया है, जितना भी आपने भोग बनाया है, 56 भोग, इस सब भोग को इकट्ठा कीजिए। इस भोग को हम किसको ऑफर करेंगे, किसको ऑफर करेंगे? गोवर्धन को। गोवर्धन को इस भोग को हम ऑफर करेंगे। हम लोग ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, हम लोग गायों की पूजा करेंगे। तो कृष्ण ने इस बात पे सबको एग्रीड किया और कृष्ण ने सबको बुलाया कि चलो इकट्ठा करो सबको, गायों को बुलाओ, रथ तैयार करो, बैलगाड़ी तैयार करो, अब हम लोग क्या करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। तो सभी, जैसे सबने बोला, कृष्ण ने बोला कि गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, सभी ब्रजवासी चिल्ला पड़े, जय हो जय हो, सब चिल्ला पड़े जय हो जय हो। बहुत खुश हो गए सभी कि अरे, क्योंकि पहली गोवर्धन परिक्रमा थी और इससे पहले आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो कृष्ण ने ये शुरू करवाया और कृष्ण चुपचाप गोपियों की तरफ मुड़े और गोपियों की तरफ मुड़ के कृष्ण ने बोला, तो आप सभी अपने आप को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से सजा दो और अपने माथों को सैंडलवुड पल्प से, चंदन से अपने माथों माथे पे लगा लो चंदन। तो कृष्ण स्पेशली गोपियों की तरफ देख के ये बात बोली। तो क्या है, ऑक्स कार्ट्स तैयार किए गए, जितने बूढ़े लोग थे उनको ऑक्स कार्ट से बिठाया गया और पहली गोवर्धन परिक्रमा शुरू हुई। तो ब्रजवासी जब गोवर्धन परिक्रमा करने लगे तो वो गा रहे थे कृष्ण की यशो का गुणगान कि कृष्ण किस प्रकार, कृष्ण ने, ब्रजवासी अपनी ब्रज भाषा में गा रहे थे कि ये वही कृष्ण है, इस कृष्ण ने, ये वही कृष्ण है जिसने तृणावत को मारा था, ये वही कृष्ण है जिसने पूतना का वध किया था। तो कृष्ण अलग, जो ब्रजवासी थे वो कृष्ण के गुणगानों को गाना शुरू किया उन्होंने और जो भी माहौल था बिल्कुल बदल गया। तो हम भी ब्रजवासियों से ये सीख सकते हैं कि हम कोई भी काम क्यों ना करें, हमें चाहिए कि कृष्ण के यश का गुणगान करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, उस समय चुपचाप ना रहे, कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण के यश का गुणगान करें। तो कृष्ण जैसे ही परिक्रमा चल रही थी, गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा के समय कृष्ण गायों के साथ साथ चल रहे थे क्योंकि कृष्ण सबको दिखाना चाहते थे कि आप वो गायों को चला सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को 2.5 महीने हो गए थे गाय चलाए हुए। तो कृष्ण गायों को चराते हुए चुपचाप पीछे मुड़ते थे और जितने भी ब्रजवासी, चाहे वो किसी भी भाव के क्यों ना हो, साखे भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, किसी भी भाव के क्यों ना हो, अपनी आंखों के माध्यम से उनसे रेसिप्रोकेशन, प्रेम का आदान प्रदान करते थे। तो ब्रजवासी जब परिक्रमा कर रहे थे तो ब्रजवासी आपस में बातचीत कर रहे थे कि देखो हमारे कृष्ण कितने अच्छे हैं, कृष्ण ने हमें एक ऐसे देवता की सेवा में लगाया है जो देवता कृष्ण से बेटर देवता है, कृष्ण से बड़ा देवता है, और ये इंद्र, आज तक कभी हमने इंद्र को देखा ही नहीं है। ब्रजवासी चर्चा कर लेंगे कि हमने आज तक कभी इंद्र को देखा ही नहीं है, तो ऐसे देवता की सेवा करने का, भक्ति करने का क्या फायदा जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है। तो जैसे ही ब्रजवासी आपस में बातचीत कर रहे थे तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक और कृष्ण ने अपना रूप लिया और ये कृष्ण का रूप गोवर्धन जितना ही बड़ा था और ये रूप बिल्कुल देखने में कृष्ण जैसा था। जब हम बड़े रूप की बात करते हैं तो हम किसी कार्टून को याद ना करें, कभी कभी बड़े रूप की बात याद करते हैं तो हमें किंग कॉन्ग याद आता है, तो किसी कार्टून को भूल जाए, जो ये गोवर्धन के ऊपर जो कृष्ण आए थे ये स्वयं जो कृष्ण सामने थे उनके जैसे लगते थे और सभी ब्रजवासी देख के चकित हो गए, ये कृष्ण और गोवर्धन कृष्ण बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ब्रजवासी इतने हैरान थे देख के। और उसी समय जो गोवर्धन थे कृष्ण के रूप में जो आए थे उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने बोला कि मेरे रूप में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही समान हैं। और कृष्ण ने ब्रजवासियों को बोला अब तुम कुछ मुझसे मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांगो, मैं उसे पूजा पूरा करूंगा। कृष्ण नंद बाबा को बोला मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। तो नंद बाबा ने बोला कि, नंद बाबा पहले तो बहुत हैरान हुए क्योंकि वो परेशान थे कि ये कृष्ण छोटा सा और वो कृष्ण इतने बड़े, तो इतने देख के चकित हो रहे थे कि क्या हुआ क्या है। तो नंद बाबा को उन्होंने गिरिराज जी ने बोला कि आप मेरे से मांगो कुछ, मैं आपके पर्व को पूरा करूंगा। तो नंद बाबा ने बोला, देखिए हमने आपकी भक्ति शुरू की थी इन दो बालकों की वजह से, कृष्ण और बलराम की वजह से, तो आप इनको ये आशीर्वाद दीजिए कि ये हमेशा खुश रहे। तो ये ब्रजवासियों का असली मूड है, ये उनका असली भाव है उनका, कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप सोचिए हमारे सामने का कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके, क्योंकि ब्रजवासियों ने देखा अपने सामने कि किस प्रकार गिरिराज ने इतना बड़ा रूप लिया है और अपने हजारों हाथों से भोग खा रहे हैं। तो इतना बड़ा रूप देख के वो निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि हमारी किसी भी इच्छा को पूरा किया जा सकता है, परंतु ब्रजवासियों की कोई भी इच्छा नहीं थी, कोई भी इच्छा, उनकी केवल एकमात्र इच्छा थी कि कृष्ण और बलराम हमेशा खुश रहे। तो गिरिराज जी ने बोला कि ठीक है, तुम मुझसे कुछ नहीं मांग रहे, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे गाय हमेशा स्वस्थ रहे और बढ़े आगे, इनका ज्यादा से ज्यादा बढ़े गाय। आप सोचिए ना कितना अलग सा रहेगा, किसी भक्त के घर में अगर डेटिस है और वो बोलना शुरू कर दे, अचानक बात करना शुरू कर दे, हम कितना हैरान हो जाएंगे उसमें। पर ब्रजवासी भी उसी प्रकार से हैरान थे। तो एक बूढ़ी महिला जो नंदग्राम में रहती थी, वो अपने घर में बैठी थी और उसने सुना था कि ऐसे गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। क्योंकि वो इतनी बूढ़ी थी, जा नहीं सकती थी, परंतु अंदर से यही प्रार्थना कर रही थी कि अगर ये कृष्ण है, स्वयं भगवान है, तो मेरे भोग को अपने आप स्वीकार कर लेंगे। तो जैसे ही भोग बन के तैयार हुआ, जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि एक हाथ आया बहुत बड़ा उस बूढ़ी महिला के घर में और जितना भी भोग घर में बना था उसको उठाया और खा लिया। तो गिरिराज जी बहुत पर्सनल तरीके से हर किसी को आनंद दे रहे थे, बताया जा रहा है ना केवल ब्रजवासियों ने, जो योगी लोग भी ब्रज में रहते थे उन्होंने भी मानसिक रूप से कृष्ण को 56 भोग और बहुत बहुत प्रकार के भोग अर्पित किए। कृष्ण ने उन्हें भी स्वीकार किया, कृष्ण अपने हजारों हाथों से खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, और हर दिशा से कुछ भी उनको मिल रहा था उसे स्वीकार कर रहे थे। तो अचानक जैसे कृष्ण जब गिरिराज खा रहे थे, तो जो कृष्ण थे, बालक कृष्ण, वो गिरिराज जी के सामने पहुंचे। बहुत सुंदर कृष्ण, उनने सुंदर पांजेब डाली हुई थी, सिर पे मोर पंख था और बहुत ही सुंदर सैश बांधा हुआ था उन्होंने कमर पर, और बहुत मुस्कुरा रहे थे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ये सोच रहे थे कि मेरा प्लान काम कर रहा है। क्योंकि कृष्ण जब ब्रजवासियों को देख रहे थे तो उन्होंने ढूंढा कि कुछ स्पाइस है इसमें, कुछ ऐसे लोग हैं इसमें झुंड में जो ब्रजवासी नहीं है, जो इंद्र के देव द्वारा भेजे गए दूत हैं उनके, और जो स्पाइस थे सब नोट कर रहे थे। जब ब्रजवासी बोल रहे थे इंद्र तो बेकार का देवता है, इसने कभी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं की, ब्रजवासी नोट वो स्पाइस नोट करते, इंद्र बेकार का देवता है, कोई इच्छा कभी पूरी नहीं की, इंद्र इसने तो कभी दर्शन भी नहीं दिए, इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिए, ऐसे देवता का क्या फायदा, ऐसे देवता का क्या फायदा, सब नोट कर रहे थे कि इंद्र के पास लेके जाएंगे बताने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कृष्ण इस पूरी पांच टाइम से यह दिखाना चाहते हैं, खासकर ब्रज में कृष्ण यह दिखाना चाहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति के अलावा मुझे किसी चीज से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो केवल अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब और किसी की नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति। तो गिरिराज जी गोवर्धन बहुत ही मर्सीफुल, बहुत ही कृपालु, क्योंकि दरअसल गिरिराज जी को दो रूप में हमेशा पूजा जाता है, हरि और हरिदास वर्य, हरि के रूप में और हरि के दास के रूप में। कृष्ण गिरिराज जी की दो फॉर्म में वर्शिप होती है। अगर हम कृष्ण से कुछ प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है प्रार्थना पूरी होने में थोड़ी देर हो जाए, अगर हम गोवर्धन से कुछ प्रार्थना करते हैं, गिरिराज जी से कुछ प्रार्थना करते हैं, तो वो तुरंत पूरी हो जाती है, इमीडिएट। क्योंकि गोवर्धन क्या है, ये कृष्ण के दास है, सर्वेंट ऑफ कृष्ण, और जितने भी बाकी सेवक हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं। तो जैसे ही गोवर्धन पूजा, गोवर्धन वर्षिप खत्म हुई, कृष्ण और जितने भी ब्रजवासी हैं सब अपने अपने गांव में जाने लगे, क्योंकि अलग अलग गांव से लोग आए हुए थे इस गोवर्धन पूजा को मनाने के लिए, अलग अलग गांव से। और जितने भी लोग थे जब अपने गांव में जा रहे थे वो बहुत खुश थे, है ना, मुस्कुरा रहे थे और ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो कृष्ण थे गोवर्धन, ये बिल्कुल हमारे कृष्ण की तरह लगते हैं और इतना सुंदर रूप था इनका। और बताया जाता है कि उस समय वो इंद्र की निंदा भी कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण उनकी मति में डाल दिया था कि ठीक है इंद्र के गुस्से को बढ़ाना है किस प्रकार से। और बताया जाता है जब ब्रजवासी अपने अपने गांव में जा रहे थे तो हर ब्रजवासी कृष्ण को उठा के लेके जा रहा था और उन्हें लग रहा था कि कृष्ण केवल हमारे साथ हमारे गांव में ही आ जाए हैं, और हर ब्रजवासी के साथ हर गांव में कृष्ण गए। तो जैसे ही कृष्ण अपने गांव में पहुंचे तो जो इंद्र के जो दूत थे वो इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र के महल में, और इंद्र ने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या बात है ये जो व्रत से हर बार मेरे लिए ऑफरिंग्स आता था, इतना छप्पन भोग आता था, इतना फ्रूट्स आता था, इतनी स्वीट्स आती थी, व्रत अपनी मिठाइयों के लिए बहुत मशहूर है, पेड़ों के लिए इतनी मिठाई आती थी, क्या बात है अब की बार कुछ आया नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम से अलग चल रहा हूँ, शायद मैं भूल गया हूँ कि क्या पता अभी समय आना ही नहीं है। तो जितने भी जो स्पाइस थे वो चुप थे, खामोश थे, और बहुत ही खामोशी से उन्होंने इंद्र को बोला कि जो पूजा थी वो समय पे थी। इंद्र कहता है अच्छा समय पे थी तो बताओ हुआ क्या, फिर कहाँ गया मेरा वो ऑफरिंग, कहाँ गया सारा वो स्पाइस। ने बोला कि सब कुछ बना था इंद्र, आप विश्वास नहीं कर सकते, जितना हर साल बनता था उससे कई कई गुना ज्यादा बना था। इंद्र कहता है अच्छा अच्छा फिर बताओ कहां गया वो सब, कहां है वो सब कुछ। तो उन स्पाइस ने बताया कि वो सब भोग तो लगा पर आपके लिए नहीं लगा इंद्र, इन ब्रजवासियों ने उस पहाड़ को, उस पत्थर को सब कुछ भोग लगा दिया। जब इंद्र ने ये बात सुनी कि मेरे को छोड़कर, मुझे छोड़कर जो मैं इनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला हूं, सभी इनकी फैसिलिटीज को देने वाला हूं मैं, मुझे छोड़कर इन्होंने क्या किया, एक पत्थर को सब कुछ दे दिया। इंद्र बहुत गुस्सा हो रहा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि इंद्र इस प्रकार क्रोधित था जैसे एक सांप को छेड़ दे तो किस प्रकार से डसने के लिए सांप आगे फुंकारता है, इस प्रकार से इंद्र इतना गुस्से में था कि क्या कैसे हो गया ये सब कुछ, किसने किया ये सब कुछ। इंद्र ने पूछा कि किसकी वजह से, किसके कहने पे सब कुछ हुआ है। तो ब्रजवासियों ने बोला कि एक काला सा लड़का है वहां पर, वो स्पाइस ने बताया कि एक काला सा लड़का है, उस बच्चे के कहने पे इन्होंने जितना भी भोग था सब कुछ उस पहाड़ को लगा दिया। और ये क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नोट्स बनाए थे उन्होंने पूरे, ये सब कह रहे हैं कि आप अच्छे देवता नहीं हो, आपसे बड़ा देवता तो गोवर्धन है, गिरिराज है, आपको कोई फायदा नहीं, आप तो यूजलेस हो बिल्कुल। तो इंद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इंद्र इतना गुस्से में आ गया कि इंद्र ने ब्रजवासियों के बारे में अपशब्द बोलने शुरू किए, गलत अक्षर बोलने शुरू किए। इंद्र ने क्या बोला कि ये जो ब्रजवासी हैं ये बहुत अहंकार में आ गए हैं, इनके अंदर इनका अहंकार, इनका प्राइड, घमंड बहुत बढ़ गया है। इंद्र कहता है मुझे देखो, मैं स्वर्ग का मालिक हूं, मेरे पास सब कुछ है, सारा यश है, सारा धन है, सब कुछ है मेरे पास, मुझे देखो मुझ में कुछ अहंकार नहीं है, मैं तो बिल्कुल अहंकार से मुक्त हूं, बिल्कुल मैंने कभी अहंकार किया ही नहीं। ये ब्रजवासी जो मेरे टुकड़ों पर पलते थे, मैं इन्हें खिलाता था वहां पर, ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़कर ये पहाड़ की शरण ले रहे हैं। इंद्र कहता है कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी नाव में सफर करने जा रहे हैं जो पत्थर की है, इनका डूबना निश्चित है। तो इंद्र ने अपने ऐसे बादलों को बुलाया जो बादल केवल आते हैं प्रलय के समय, संवर्तक। इंद्र ने अपने संवर्तक बादलों को बुलाया और जैसे ही इंद्र ने बादलों को बुलाया बादल सामने आए और बादलों ने बोला कि क्या बात है कृष्ण, आपने हमें बहुत जल्दी बुला लिया, अभी तो प्रलय का समय नहीं आया, इतनी जल्दी आपने हमें क्यों बुलाया है। बातों को समझ नहीं आ रहा था। तो इंद्र ने क्या किया, उन्हें आदेश दिया कि जाओ, मेरा आदेश है तुम सभी के लिए, जाओ पृथ्वी लोक पर, ये ब्रज, इस ब्रज में जाओ, पूरे ब्रज का नाश कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, सभी ब्राह्मणों को, ब्रजवासियों को, गाय को, सबको मार दो, ये गोवर्धन पर्वत टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, गोवर्धन के। साथ में मरुत खड़े थे, 49 मरुत खड़े थे। इंद्र ने बोला कि तुम सब खड़े हो क्या कर रहे हो यहां पर, जाओ सहायता करो इनकी, ऐसी आंधी लाओ, इतनी तेज वर्षा लाओ कि पूरी जमीन नीचे से खिसक जाए और गोवर्धन के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और जैसे ही उन्होंने आदेश सुना तो आदेश के प्रति आगे प्रोसीड करना, पढ़ना उन्होंने शुरू किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं मनहा शिक्षा के पहले श्लोक में, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अप प्राइड, सबसे पहली चीज अगर भक्त को कुछ करनी है तो उसको ये करने कि अपने अहंकार को, अपने घमंड को छोड़े। अगर ये घमंड मेंटेन रहेगा तो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें प्रश्न ये उठता है, व्हाई इंद्र वाज बिकम फ्यूरियस, इंद्र इतना गुस्सा, इंद्र में इतना गुस्सा कैसे आ गया, क्योंकि ये तो जो ब्रजवासी थे ये तो छोटे इंद्र के सामने क्या थे, कुछ भी नहीं थे। आप सोचिए ना, अगर आप एक शेर को देखें, शेर मच्छर को मारने के लिए भाग रहा है, कैसा लगेगा देख के, बड़ा अजीब सा लगेगा कि नेचुरल नहीं लगेगा, बिल्कुल नेचुरल नहीं है ना। अगर व्यक्ति युद्ध भी कर रहा है तो अपने बराबर के व्यक्ति से युद्ध करता है ना? तो ये सब चीजें कैसे आ गई। तो दरअसल जो हमने शुरू में बताया कि इंद्र की हजार आंखें तो थी परंतु इंद्र फिर भी अंधा था, क्योंकि घमंड से, अहंकार के कारण उसकी सारी आंखें ढकी गई थी। और देखिए, ये प्राइड जो है, अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, और इस प्राइड से मुक्त होने का तरीका जो है वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता व्यक्ति को एक अच्छा विजन, एक अच्छी दृष्टि देती है। जो भी व्यक्ति अहंकार में होता है, घमंड में होता है, उसे लगता है कि पूरा संसार घमंड में है, पूरा संसार अहंकार में है। आप सोचिए, जैसे कभी देखा ना, बच्चे घूमते हैं या कभी कीर्तन में नाचते भी हैं, तो काफी देर तक अगर गोल गोल घूम ले बीच में और अचानक हम रुके तो क्या लगता है, कैसा लगता है, सब कुछ घूम रहा है। तो यही प्राइड है, यही अहंकार है, यही दम है। जब हम प्राइड में बिल्कुल उन्मत्त होते हैं, पागल होते हैं, तो हमें लगता है हर कोई अहंकार में है। और ये जो प्राइड है, इसकी सिम्टम है नष्ट का, काम का। जब काम, सीता माता ने पूछा था राम जी से कि आप प्राइड का, ये लस्ट का कोई सिम्टम बताइए, अगर लस्ट को चेक करना है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं। राम जी ने बताया कि लस्ट का ये सिम्टम है कि ऐसा व्यक्ति, he gives inappropriate punishment to his subordinates, जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो भी नीचे लोग होते हैं, उनको ऐसी सजा देता है जो inappropriate हो, जो योग्य नहीं है देने की। इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं था जितना वो कुपित, क्रोधित हो गया है। और प्राइड का यही लक्षण है, प्राइड का, कि अगर कोई भी व्यक्ति प्राइड में है, घमंड में है, अगर आप उसके प्राइड को पूरा करते जाए, घमंड को पूरा करते जाए, तो उसकी भक्ति के लिए और नुकसानदायक है ना। भृगु मुनि जब एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे और ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान कौन है, तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि हम हर व्यक्ति को चेक करेंगे और वही व्यक्ति भगवान है जो किसी प्रकार का मान नहीं चाहता, किसी प्रकार के मान की उसको जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से भृगु मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी वर्बली क्रोधित हुए उनके ऊपर, फिर शिव जी के पास गए, शिव जी को उन्होंने अपशब्द बोले, शिव जी मारने के लिए दौड़े उनको पीछे, फिर विष्णु के पास गए, विष्णु जी को उन्होंने क्या किया, उनकी छाती पे लात मारी। पर जैसे ही विष्णु की छाती पे लात मारी, विष्णु जी तुरंत खड़े हो गए, उन्होंने अपनी सीट पर उनको बिठाया, भृगु मुनि को, और उनके चरण दबाए, और विष्णु ने ये बोला कि मेरी छाती इतनी कठोर है, तुम्हारे चरणों को कोई चोट तो नहीं लगी ये प्रहार से। तो जो घमंडी व्यक्ति होता है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, उसका ये लक्षण होता है कि वो बदला लेने के लिए हमेशा आतुर होता है। एक बार एक हॉलीवुड बहुत पहले एक हॉलीवुड सॉन्ग आया था रिवेंज रिवेंज रिवेंज, तो यही सॉन्ग हम सबके अंदर चलता रहता है बदला बदला बदला। अगर हमारे प्रति कोई जरा सा भी कुछ गलत कर दे तो बदला लेने की भावना हमेशा रहती है। परंतु कृष्ण का यही लक्षण है कि कृष्ण कभी भी अपने भक्तों के अंदर इस अहंकार को नहीं देख सकते। कृष्ण जब भी देखते हैं कि भक्तों के अंदर अहंकार है, कृष्ण उस भक्त को नीचे खींचते हैं और उसे सबके सामने एक्सपोज करते हैं, सबके सामने दिखाते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो उसे। तो कृष्ण क्या करते हैं, सभी के सामने उसे एक्सपोज करते हैं भक्त को। तो एक बार एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस पास टाइम को, कि एक बार एक राजा ने अपने महल में एक ब्राह्मण से पूछा, राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि आप मुझे बताइए कि भगवान का क्या काम है, भगवान क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, आपके भगवान क्या करते हैं। तो उस ब्राह्मण के पास कोई उत्तर नहीं था इसका। तो ब्राह्मण ने बोला मैं सोच के बताऊंगा आपको। तो ब्राह्मण क्या किया, ब्राह्मण चले गया। कुछ दिन उन्होंने सोचा, समझ नहीं आया। जब ब्राह्मण ने सोचा अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो राजा मुझे मार देगा, वो गांव छोड़कर जा रहा था तो उसका एक शिष्य मिला उसे रास्ते में। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आप कहां जा रहे हो सबको छोड़कर। तो उन्होंने बताया देखो ऐसे वैसे प्रश्न पूछा राजा ने, मैं उसको उत्तर नहीं दे पा रहा इसलिए मैं जा रहा हूं। शिष्य ने पूछा कि प्रश्न क्या है, ब्राह्मण कहता है आपको बताने का क्या फायदा, जब मैं नहीं दे पा रहा तो आप कैसे दोगे। तो ब्राह्मण उस व्यक्ति शिष्य ने बोला गुरुजी आप बताइए तो सही। तो गुरु ने बोला कि देखिए उस राजा ने यह प्रश्न पूछा है कि भगवान आपके भगवान हर समय क्या करते हैं, क्या काम है उनका। तो शिष्य ने बोला गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मैं राजा के महल में जाकर इसका उत्तर दे दूंगा। तो अगले दिन वो जो शूद्र था वो राजा के महल में गया और राजा के महल में जाने के बाद वो राजा के सामने में आया और राजा ने बोला ठीक है उत्तर है अब आपके पास, तैयार उत्तर देने के लिए। उसने बोला हाँ तैयार हूं उत्तर दीजिए। उसने बोला कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है उत्तर देने का, देखिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उत्तर दे रहा हूं, आप ऊंची पदवी पे खड़े हैं मैं नीचे खड़ा हूं, ये बनता नहीं है। अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप नीचे आइए और मैं ऊपर आऊंगा। तो राजा क्योंकि उसने प्रश्न पूछा था वो फंस गया इसमें। अब उसने कहा ठीक है पर ध्यान रखना अगर उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो जैसे ही राजा नीचे उतरा और वो शूद्र आसन पर पहुंचा तो उसने बोला कि यही उत्तर है, कृष्ण भगवान, भगवान का केवल यही कर्तव्य है, यही कार्य है भगवान का कि भगवान जो अहंकारी होता है उसको नीचे खींचते हैं और जो विनर्म होता है उसको ऊपर उठाते हैं, यही भगवान का कर्तव्य है, यही भगवान का कार्य है और इसी में कृष्ण हमेशा लगे रहते हैं। तो जैसे ही इंद्र ने वहां पर बुलाया संवर्तक बादलों को और जो संवर्तक बादल थे उन्होंने घमासान बारिश शुरू की और ये घमासान बारिश ऐसा प्रलय लाने वाली थी कि सब कुछ नष्ट हो रहा था, सब कुछ। बताया जाता है कि उस समय एक स्त्री एक ब्रज की गोपी जो यमुना पे पानी भरने के लिए गई थी, इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि उसे समझ नहीं आया कि यमुना कहाँ है और लैंड कहाँ है, वो समझ नहीं आ रहा था, सब एक बराबर हो चुका था, इतनी घमासान बारिश आ रही थी ना, गायें भाग रही थी इधर उधर, किसी ना किसी प्रकार से गायें अपने शरीर से अपने बच्चों को ढक रही थी कि उनको ये बारिश नहीं लगे। आप सोचिए ऐसी बारिश जिसकी पानी की एक बूंद इस खंबे के समान हो, अगर ऐसी बारिश पड़ रही हो तो क्या हालत होगी, सब कुछ खराब, सब कुछ नष्ट होता जा रहा था, हर तरफ अंधकार था केवल, है ना। जितने लोग थे अपने घरों का रास्ता भूल गए थे, जो लोग काम पे निकले थे खेतों में गए थे वो पूछ रहे थे कि हमारा गांव कहाँ पर है, किधर है हमारा गांव, सब कुछ एक बराबर लग रहा था, माउंटेन्स बड़े बड़े पहाड़ियां और खाइयां एक बराबर हो गई थी समतल, इतना पानी भर चुका था कुछ ही मिनटों में, इतनी घमासान बारिश आ रही थी। ब्रजवासी जब उन्होंने बारिश सुनी बारिश देखी उन्होंने, तो बारिश देख के उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये इंद्र बदला ले रहा है हमारे से, इंद्र रिवेंज दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब स्थिति में हम क्या करें, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अब इंद्र हमारे से इतना घमासान बदला ले रहा है। तो उन्हें याद आई गर्ग मुनि की वो स्टेटमेंट, गर्ग मुनि ने जो बोला था कि ब्रज में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, पर ये छोटा सा बालक हर बाधा से तुम्हारी रक्षा करेगा। तो जैसे ही ब्रजवासियों में बात याद आई, सभी ब्रजवासी गए उस समय नंद में, नंद बाबा के वहां पर, नंद महल में, नंद ग्राम में गए वहां पर, और उन्होंने जाकर कृष्ण से सहायता मांगी कि कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। तो यही एक भक्त का लक्षण है। एक भक्त जब खतरे में होता है बहुत ज्यादा, तो भक्त क्या करता है, वो भगवान की शरण लेता है। और कोई भी अपोजिशन, कोई भी खतरा अगर भक्त के जीवन में आता है तो उसको सिर्फ एक ही समाधान सोचता है कि मुझे कृष्ण की शरण लेनी है। और जब ब्रजवासियों ने देखा कि इतनी घमासान बारिश पड़ रही है और इस बारिश से अब हम लोग नहीं बच सकते अपने बलबूते पर, तो ब्रजवासियों ने क्या किया, कृष्ण के पास गए। और कृष्ण ने, क्योंकि देखिए हालांकि कृष्ण के पास बहुत शक्तियां हैं, कृष्ण अपने किसी भी शक्ति से इंद्र को ठीक कर सकते थे, पर कृष्ण ने क्या करना था, कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ना था। तो जब कोई अहंकारी व्यक्ति हो, घमंड में कोई व्यक्ति हो, अगर उसके घमंड को तोड़ना हो तो सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका यह है, इग्नोर है, उसको इग्नोर कर दीजिए। जब उसको इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, तो खाली महसूस करना शुरू कर देगा, क्या हो गया ये, क्यों हो रहा है सारा ऐसा। कृष्ण हालांकि डायरेक्ट इंद्र से बात कर सकते थे कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो। कृष्ण ने पक्का किया हुआ था कि इंद्र के अहंकार को तोड़ना है, काटना है। इंद्र ने, कृष्ण ने क्या किया, ऊपर देखा, मुस्कुराए और कृष्ण भागे। बताया जाता है कि कृष्ण जब भागे नंदग्राम से, इतनी तेज बारिश चल रही थी, पर कृष्ण की जो शक्ति थी, संहारी की शक्ति, जिस जहां से कृष्ण भागते हुए जा रहे थे उस पोर्शन में बारिश पड़ ही नहीं रही थी। बताया जाता है कि कृष्ण के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं पड़ी। कृष्ण नंदग्राम से भागे थे, जो वृंदावन गए उनको पता होगा नंदग्राम गोवर्धन में कितना डिस्टेंस है। नंदग्राम से कृष्ण भागते भागते गए गोवर्धन तक, एक पानी की बूंद कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें कि कृष्ण अपने भक्तों की सहायता करने में हमेशा तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं लेता, भगवान की शरण नहीं लेता, उसके लिए छोटी छोटी परेशानियां ऐसे होती है जैसे किसी के पैर में कांटा चुभ गया हो। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ गया है, वो छोटी सी परेशानी उसे इतना डिस्टर्ब कर देती है। पर जो भगवान को शरणागत होते हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ली होती है, उनके लिए परेशानियां कैसे होती है, एक धुएं के समान, जो थोड़े समय के लिए आती है और खत्म। तो ब्रजवासियों के लिए ये जो समस्या थी ऐसी ही थी, एक धुएं के समान थी। और सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण से प्रार्थना की कि कृष्ण इतनी बारिश पड़ रही है, इससे आप हमारी रक्षा कीजिए। और ब्रजवासियों ने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला, उसे हमारे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथ गोकुल प्रभु त्रातुम अहसि देवाना कुपित भक्त वत्सला। सभी ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कृष्ण से कि कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, महाभाग आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि देखिए कृष्ण का तो कोई वेट लिफ्टिंग का एक्सपीरियंस था ही नहीं, बलराम जी का तो वेट लिफ्टिंग का एक्सपीरियंस है, वो अनंत शेष के रूप में अपने सर पे सभी ब्रह्मांडों को उठाते हैं। परंतु कृष्ण इस लीला से ये दिखाना चाहते थे कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो स्वयं आते हैं और स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जब कृष्ण ने ये सुना, तो कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बोली। तो ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं, इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिखा है, इसे आपको पढ़ के बताएंगे। दिस मस्ट बी द वर्क ऑफ एंग्री इंद्रा, ये जो कार्य है ये क्रोधित इंद्र का कार्य है, हु थिंक हिमसेल्फ सुप्रीम, जो अपने आप क्या समझता है, बहुत महान समझता है. आई विल ब्रेक हिज फॉल्स प्रेस्टीज टू ब्रिंग इंद्रा. भगवान क्या कह रहे हैं, मैं इसके घमंड को तोड़ूंगा, किस लिए, टू ब्रिंग इंद्रा रिलीफ फ्रॉम दिस टेरिबल डिजीज. तो क्या कह रहे हैं यहां पर कृष्ण, कि कृष्ण इंद्र का घमंड तोड़कर मैं इसको एक रिलीफ दूंगा, एक शांति दूंगा, क्योंकि कृष्ण को पता है कि अगर मेरे बिना ये जितने भी भक्त हैं ये परेशान हैं, ये दुखी हैं, अशांत हैं, ये इनको शांति तभी मिलेगी जब ये मेरी सेवा करेंगे. तो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो. और ये हमेशा बात याद रखिए कि कृष्ण कभी भी अपने भक्तों में अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्राइड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जिस भी भक्त में वो प्राइड देखते हैं उसे वो नीचे खींचते हैं. परंतु सजा देने के लिए नहीं, उसको परेशान करने के लिए नहीं. भौतिक संसार में हर व्यक्ति किसी को नीचे खींचता है उसे परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए. पर कृष्ण किसी को नीचे दिखाते हैं अगर, परेशान करते हैं, तो किस लिए, उसको एक रिलीफ देने के लिए, शांति देने के लिए उसको. तो कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण कहते हैं कि मैं रक्षा करूंगा इन सभी ब्रजवासियों की, क्योंकि इन्होंने मेरी शरण ली है, मैं इनका मालिक हूं, आई एम देयर मास्टर. कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरा परिवार है, और हालांकि मैंने एक शपथ ली थी कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से इनकी रक्षा करूंगा. तो कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बोला, कि आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, ऊपर देखिए इंद्र की तरफ और मुस्कुराइए, हंसिए इंद्र की तरफ, कुछ नहीं कर सकता ये आपका. तो जैसे ही ब्रजवासी ने सुना, कृष्ण ने ही उनको प्रोत्साहन दिया, सभी ब्रजवासी बहुत खुश हो गए. और जैसे ही कृष्ण भागने वाले थे, जितने भी सखा करते उन्होंने कृष्ण को रोक लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं कृष्ण मत जाओ, बहुत बारिश पड़ रही है, और आपकी माता ने हमारे को बोला था कि कृष्ण ये बहुत अनस्टेबल बच्चा है, इन स्थिर नहीं है, कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, इसका हमेशा ध्यान रखना. और अब हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि तुम स्थिर नहीं हो, तुम बैठो तुम ये काम नहीं कर पाओगे. सारे बॉल वालों डुक लेके हमारे साथ खेलता, हम इसको मारते हैं, क्या क्या करेगा इंद्र के खिलाफ. तो सभी बॉल वालों ने रोक लिया. तो कृष्ण ने पूछा कि अच्छा मैं क्या करूंगा ऐसा ताकि तुम मुझे जाने दोगे. तो ब्रजवास सखाओं ने बोला कि कुछ ऐसा करके दिखाओ ताकि हमें विश्वास हो, कॉन्फिडेंस तो आए हमारे में. तो कृष्ण क्या किया, एक कदम का बहुत बड़ा वृक्ष था, कृष्ण ने उसकी डाली को पकड़ा और पूरा घुमा दिया, वो पूरा कदम का वृक्ष घूम गया, और उसकी डाली थी वो ऐसा बन गई जैसे झूला हो. कृष्ण ने उस कदम के वृक्ष के साथ में बुरा नहीं किया, कृष्ण ने उस डाली को इसलिए मोड़ा क्योंकि कृष्ण को पता है बाद में स्विंग पास टाइम इसी में करेंगे, वो बाद में जो झूलन यात्रा होती है उनकी वो यहीं पर ही मनाएंगे वो. तो कृष्ण ने उस डाली को मोड़ दिया, और जब सखाओं ने देखा, सखाओं समझ गए हाँ हाँ कृष्ण बुरा नहीं था, तुम जा सकते हो. तो कृष्ण ने भागना शुरू किया नंदग्राम से गोवर्धन तक, और संहारी की शक्ति बिल्कुल कृष्ण के ऊपर थी, और एक बूंद भी पानी की कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ रही थी, एक बूंद पानी भी. बताया जाता है कि कृष्ण जब भागते हुए जा रहे थे तो कृष्ण ने एक गोवर्धन के नीचे एक टनल खोद दी, एक सुरंग खोद दी, और जैसे ही कृष्ण ने जिस सुरंग खोदी, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया. श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया, अपने हाथ में उठाया कृष्ण गोवर्धन पर्वत को, और बताया जाता है वैसे उठाया जैसे एक छोटा सा बच्चा मशरूम उठाता है, उतना सा भार था सिर्फ मशरूम उठाने वाला. और कृष्ण ने अपने सभी ब्रजवासियों को बोला आओ नीचे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, कृष्ण से बिल्कुल मत घबराओ, आओ नीचे आ जाओ. तो ये प्रेम का यही लक्षण है कि जब कोई किसी प्रेम करता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी उसके सामने कुछ नहीं लगती. बताया जाता है कि कुछ जानवर जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन इतना बड़ा रूप में गोवर्धन ने अपना विस्तार कर लिया कि जो संवर्तक बादल में थे उनको भी भेद कर गोवर्धन ऊपर चले गया। और गोवर्धन पर्वत पर इतने सारे जानवर थे, शेर, हिरण, इतने सारे अलग अलग जानवर थे, कोई जानवर इंद्र की बारिश से नहीं डर रहा था, हर कोई निश्चिंत था। बताया जाता है कि इतनी घमासान बारिश होने के बाद भी एक गोवर्धन शिला गिरराज से नीचे नहीं गिरी बारिश की वजह से। हालांकि कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था तो कृष्ण ने इतने सुंदर वे में गोवर्धन उठाया कि गोवर्धन की, क्योंकि देखिए गोवर्धन तो उठा लिया, पानी बाकी डायरेक्शन से तो नीचे घुस सकता है, पर कृष्ण ने इस स्टाइल में गोवर्धन उठाया कि इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं गिरी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को चारों तरफ से ढक लिया और अब किसी साइड से पानी अंदर नहीं आ सकता था। और सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर घूम रहा था, गर्ग संहिता में बताया गया है, इतनी तेजी से घूम रहा था कि पानी की एक बूंद गोवर्धन के ऊपर नहीं गिर रही थी। किसी को पता ही नहीं लग पा रहा था कि बारिश हो भी रही है क्या, कोई प्रॉब्लम भी आई है क्या। देखिए अगर हम कोई गड्ढा खोदते हैं, मान लीजिए किसी घर में खुदाई होती है, गड्ढा खोदते तो कैसा निकलता नीचे से, कैसा होता नीचे से, मिट्टी मिट्टी है ना, कूड़ा सा लगता है, मतलब कोई खड़ा नहीं होना चाहेगा। पर बताया जाता है जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन के नीचे लेक्स निकली, बहुत सुंदर सुंदर पॉन्ड्स थे, बार्ली की घास थी वहां पर ताकि गायों से खा सके। और बताया जाता है कि आचार्य बताते हैं कि उसके नीचे बहुत बड़े बड़े महल निकले और इतनी अच्छी ऑप्शंस थी हर ब्रजवासी के पास, हर किसी के लिए अपना अपना महल निकला गोवर्धन के नीचे से, परंतु एक ब्रजवासी भी महल के नीचे नहीं गया, अंदर नहीं गया। क्यों क्यों नहीं गए महल के अंदर? क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहना चाहते थे, हर बार तो कृष्ण छोड़कर चले जाते थे, कभी गायें चराने के लिए, कभी किसी और काम से। ये पहली बार ऐसा मौका मिला था कि अब कृष्ण कहीं नहीं जा सकते थे, कृष्ण वहीं पर ही ब्लॉक थे अब 7 दिनों के लिए। तो बहुत ही सुंदर फेस्टिवल मनाया जा रहा था, हर कोई खुश था, हर कोई एंजॉय कर रहा था, केवल एक व्यक्ति के अलावा, वो थी मदर यशोदा, यशोदा माता। यशोदा माता बहुत घबरा रही थी कि छोटा सा मेरा बालक है, इसने गोवर्धन उठाया है, सुबह से कुछ खाया नहीं है इसने, वहां पर इसका पेट तो देखो बिल्कुल बिल्कुल दब गया, इसने कुछ खाया नहीं, भूखा है सुबह से। यशोदा माता बहुत घबरा रही थी। तो जैसे यशोदा माता घबरा रही थी, मधुमंगल पास आए और मधुमंगल यशोदा माता को आश्वासन देने लगे कि माता आप घबराओ मत, दरअसल कृष्ण ने गोवर्धन उठाया ही नहीं है, ये तो मेरे मंत्रों की शक्ति है जिसकी वजह से गोवर्धन उठा हुआ है। तो क्योंकि मधुमंगल का नेचर ही ऐसा जोकिंग नेचर, तो यशोदा माता को उस समय, लेकिन यशोदा माता जोक के मजाक के मूड में नहीं थी। तो कृष्ण देखा जब यशोदा माता इतना उदास हैं, तो बताते हैं श्री रूप गोस्वामी बताए गोवर्धन धारा में उन्होंने प्रेयर्स लिखी है किस प्रकार कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। तो बता रहे श्री रूप गोस्वामी की किस प्रकार गोवर्धन, कृष्ण ने जो एक हाथ से गोवर्धन उठाया हुआ था, कृष्ण ने हल्का सा गोवर्धन को उछाला और अपनी छोटी उंगली के टिप पर ले आए, ये दिखाने के लिए यशोदा माता से कि माता आप घबराओ मत, ये मेरे लिए भार है ही नहीं, ये तो मैं ऐसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो मैं ऐसे ये तो बस इंजॉय कर रहा हूँ, आपके लिए घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। तो उस समय जो माहौल था बहुत ही अद्भुत माहौल था, हर ब्रजवासी कृष्ण की सुंदरता को देख पा रहा था, कृष्ण के सुंदर चरण, कृष्ण का पेट, हर कोई उसको देख पा रहा था कृष्ण को, केवल एक कृष्ण की जो पांजेब थी वो शांत थी। कवि कर्णपुर बताते हैं कि कृष्ण की पांजेब इसलिए शांत थी क्योंकि उस समय वो कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रही थी, इसलिए वो शांत थी। उसके अलावा हर कोई एंजॉय कर रहा था, हर कोई कूद रहा था वहां पर, नाच रहा था, गा रहा था, और म्यूजिक वहां पर हर कोई कीर्तन कर रहा था, म्यूजिक चल रहा था हर तरफ। और जैसे ही इतना म्यूजिक का एटमोसफेयर बना हुआ था, कृष्ण ने क्या किया, अपनी बांसुरी निकाली और बांसुरी बजाना शुरू किया। मधुमंगल ने कहा नहीं 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 कृष्ण, नहीं नहीं नहीं, ये बांसुरी बजाने का समय नहीं है, कंसंट्रेट करो, गोवर्धन गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। देखो कृष्ण आपको पता है आपकी बांसुरी के क्या लक्षण है, आप बांसुरी बजाते हो यमुना स्थिर हो जाती है, पत्थर पिघल जाते हैं, अगर ये गोवर्धन पिघल गया तो हमारा क्या होगा, कंसंट्रेट करो बांसुरी अभी नहीं, ये म्यूजिक कंसोर्ट का समय नहीं है, बाद में करना सब चीजें। तो इसी प्रकार से इतना फेस्टिव एटमॉस्फेयर अंदर चल रहा था और बाहर देखा जाए तो बाहर प्रलय आ रही थी, क्योंकि समर्थक बादल सब कुछ नष्ट कर रहे थे, सब कुछ। और उस समय गोवर्धन के नीचे हर भक्त, चाहे वो माधुर्य भाव का हो, साख्य भाव का हो, वात्सल्य भाव का हो, दास्य भाव का हो, हर अलग अलग भाव के रस कृष्ण से आंखों आंखों में आदान प्रदान कर रहे थे। और बहुत ही सुंदर माहौल था। एक आचार्य बताते हैं अपनी टीका में कि उस समय दो तूफान चल रहे थे। एक तूफान चल रहा था गोवर्धन के ऊपर, इतना बड़ा तूफान आया हुआ था। एक तूफान चल रहा था गोवर्धन के नीचे, और वो तूफान था प्रेम का तूफान। आचार्य बताते हैं इस प्रेम के तूफान में एक बादल निकला हुआ था, वो बादल था मुकुंद कृष्ण। जो कृष्ण का मोर पंख था वो वैसा ही फैला हुआ था जैसा रेनबो, इंद्रधनुष निकला हो जैसे। कृष्ण की जो सुंदरता थी, कृष्ण की सुंदरता से ऐसी बाढ़ आई हुई थी कि सभी ब्रजवासी बहते जा रहे थे, और जो गोपियां थी वो बिजली के समान थी। तो पूरा वैसा ही एटमॉस्फेयर, जैसे ऊपर था नीचे भी वही एटमॉस्फेयर था। पर आचार्य बताते हैं नीचे एक चीज स्पेशल थी, ऊपर के तूफान में सूर्य नहीं था, नीचे के तूफान में सूर्य भी था। कृष्ण की कौस्तुभ मणि, कृष्ण की कौस्तुभ मणि से इतना प्रकाश निकल रहा था कि हालांकि आकाश में सूरज नहीं था, परंतु फिर भी गोवर्धन के नीचे ऐसा माहौल था कि सब कुछ जगमगा रहा था, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर। और कृष्ण ने 7 दिनों तक 7 रातों तक गोवर्धन को उठाया था, और ब्रजवासी इतने खुश थे कृष्ण को देखकर। पर एक व्यक्ति बहुत परेशान होता जा रहा था, वो था इंद्र। इंद्र सबको मोटिवेट करता जा रहा था, हारो मत, हारो मत, और तेजी से बारिश करो, मिलेगी कामयाबी मिलेगी, और सबका उत्साह बढ़ाता जा रहा था। परंतु कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल चल नहीं रहा था। गुस्से के मारे जो इंद्र था बिल्कुल आग बबूला हो रहा था। तो इसी प्रकार से जब इंद्र ने कुछ देर और कोशिश की बारिश 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 तूफान करने की, इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इंद्र ने तुरंत अपने सभी जितने बादल थे और जितने मरुदगण और जितने देवताओं की मत कर रहे थे सबको बोला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस और बारिश नहीं, जल्दी जाओ, भाग जाओ कहीं पर, छुप जाओ, अरे ये तो स्वयं भगवान है, ये तो कृष्ण है। तब इंद्र को समझ आया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। तो इसी प्रकार से जैसे ही इंद्र ने ये अनाउंस किया सभी बादल हट गए, दोबारा सूरज निकला, और कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बोला आप कोई खतरे की बात नहीं है, आप सब बाहर जा सकते हो। परंतु कोई ब्रजवासी बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि कृष्ण की सुंदरता को इतना महसूस कर रहे थे, कोई ब्रजवासी बाहर नहीं जा रहा था। कृष्ण ने किसी ना किसी प्रकार से सभी ब्रजवासियों को बाहर भेजा, क्योंकि ब्रजवासी बाहर गए तो गाय भी साथ साथ चले गई। परंतु जैसे ही गाय गोवर्धन से बाहर गई, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कृष्ण वहीं खड़े हैं, सारी गाय दोबारा भाग गई कृष्ण के पास और दोबारा वहीं जाकर खड़ी हो गई, कोई नहीं जाना चाहता था वो जगह छोड़कर। परंतु कृष्ण ने somehow सबको बाहर भेजा और गोवर्धन को दोबारा नीचे रखा। अब ये मत पूछिएगा कैसे रखा, ये समझना बहुत मुश्किल है, परंतु बिल्कुल एप्रोप्रिएट रखा, क्योंकि गोवर्धन का जो पूरा शरीर है ये एक शरीर के साथ तुलना है, आंखें पेट पैर सिर पर, और कृष्ण जैसा उठाया था वैसा ही रखा दोबारा, ऐसा नहीं था कि आंखें पैरों की जगह पे आ गई, बिल्कुल सेम वैसे का वैसे कृष्ण ने दोबारा उसको रखा। तो जैसे ही कृष्ण गोवर्धन से बाहर आए सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण को उठाया और धूमधाम से कृष्ण को आशीर्वाद देना शुरू किया। जो माताएं थी वो कृष्ण को चूमने लगी, और जो कृष्ण के सखा थे कृष्ण की मसाज करने लगे, कुछ लोग कृष्ण का गुणगान करने लगे, कुछ लोग कृष्ण की जो छोटी वाली उंगली जिसपे गोवर्धन उठाया था इसको दबाने लगे, फूंकने लगे, काफी लंबे समय से उठाया दर्द ना हुई उसमें, और कुछ लोग गले लगा रहे हैं, कुछ लोग कृष्ण को खिला रहे हैं। तो कृष्ण दरअसल इस पास्ट टाइम से ये दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मुझे शरणागत होता है, मेरी शरण लेता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो द्रौपदी ने भी ये प्रश्न पूछा था कृष्ण से, जब कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, कि कृष्ण मैं आपको कब से पुकार रहे थे, आप इतना देरी से क्यों आए? आपने मेरी रक्षा तो की, पर आप इतनी देरी से क्यों आए? तो कृष्ण ने उत्तर दिया, पहले आप मुझे तो बुला रहे थे, पर साथ साथ भीष्म पितामह की शरण ले रही थी, भीम की शरण ले रही थी, धृतराष्ट्र के पास ही जाके कह रही थी कि रक्षा कीजिए, रुकवाइए इस अत्याचार को। जब कुछ नहीं चला, जब आपने ये देखा कि कोई नहीं सुन रहा आपकी, तो अपने अपने हाथों से अपनी रक्षा करनी शुरू की। पर जब आपने ये देखा कि अब आप भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो आपने दोनों हाथ उठाकर मुझे पुकारा। और जैसे ही आपने मुझे पुकारा, जैसे ही वो अनन्य भक्ति कृष्ण ने देखी, कृष्ण तुरंत भागे में चले आते। तो कृष्ण दरअसल अपने हर भक्त में ये अनन्य भक्ति देखना चाहते हैं। कृष्ण कभी टॉलरेट नहीं कर सकते कि उनका भक्त किसी और की शरण ले। तो जैसे ही कृष्ण ने एक गोवर्धन पर्वत नीचे लिखा, ब्रजवासी कृष्ण से मिले, जितने भी ब्रजवासी थे सभी अपने अपने गांव में गए। और गांव में जाने के बाद हर ब्रजवासी के मन में एक संदेह आने लगा कि क्या कृष्ण भगवान है। सभी इतने कंफ्यूज थे, डाउटफुल थे कि क्या कृष्ण सच में भगवान है। तो सभी ने सोचा कि चलो नंद बाबा से आके पूछते हैं। हर कोई गया नंद बाबा के पास पूछने के लिए। तो नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, दरअसल गर्भ मुनि जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि इसके अंदर नारायण जैसा कुछ आवेश है, कुछ शक्तियां हैं नारायण जैसी, वैसे ये नारायण नहीं है। देखते नहीं किस प्रकार माखन खाने के लिए तो उधर भागता ही है, कोई भी इसे नचा के चले जाता है, ये भगवान नहीं है। तो दरअसल ये प्रेम है। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है, ब्रजवासी महसूस कर पा रहे थे कि कृष्ण जैसा व्यक्ति हमारे गाँव में आया है, हम इसके योग्य नहीं है। तो दरअसल प्रेम की ये सबसे बड़ी योग्यता यही है कि व्यक्ति ये फील करता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। एक बार एक भक्त बता रहे थे अपने गुरु के लिए, वो बता रहे थे कि मैं एक काली चींटी के समान हूं जो काले पत्थर पे थी, काले ब्रह्मांड में, काली रात्रि में, पर मेरे गुरु इतने कृपालु थे जिन्होंने मुझे उस समय भी देख लिया और उस समय मुझे वहां से उठाकर ऊपर ले आया, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाया। तो ये प्रेम की योग्यता है कि व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन को कभी भी फील नहीं करता, उसको लगता है कि उस पे अहेतु की कृपा हुई है। तो पर अब कुछ ऐसा था कि इंद्र बहुत भयभीत था, इंद्र बहुत दुखी था, परेशान था। इंद्र सोच रहा था कि अभी तक तो कृष्ण बहुत बिजी थे, इंद्र बिजी थे अभी तक, कृष्ण बिजी थे अपने भक्तों की रक्षा करने में, पर अब क्या है, कृष्ण मुक्त हो चुके हैं, अब ये मेरी क्लास लेंगे कृष्ण। तो इंद्र बहुत घबराया हुआ था, इंद्र सोच रहा था कि क्या कृष्ण यमराज को मेरे पीछे भेजेंगे मुझे मारने के लिए, क्या करेंगे कृष्ण मेरे साथ, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को, ब्रजवासियों को बहुत प्रेम करते हैं और कृष्ण के अत्याचार किसी पे नहीं देख सकते। तो इंद्र ने क्या सोचा, इंद्र ने सोचा कि अच्छा लगता है, मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूं और एक उनसे पूछता हूं कि क्या करना चाहिए। तो इंद्र ने क्या किया, वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि बताइए इस स्थिति में मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो तुम जाओ वहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अकेले मत जाना, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये याद आ रहा था कि उन्होंने भी ये गलती की थी पहले कृष्ण का टेस्ट लेके, जब उन्होंने गौर वालों को चुरा लिया था। तो ब्रह्मा जी को याद था कि कृष्ण ने उनको भी बहुत अच्छा लेसन दिया था, पर ब्रह्मा जी इसलिए खुश थे क्योंकि उनको पता था कि अब की बार उनका नंबर नहीं है, अब की बार क्लास किसी और की लगनी है, उनको कुछ नहीं होगा, तो बहुत खुश थे ब्रह्मा जी। पर कृष्ण को फिर भी पूरा समझ नहीं आया। तो कृष्ण की जो पत्नी है शची माता, उन्होंने कृष्ण को बोला कि जाओ, तुम जाओ ब्रज में, पर अकेले मत जाओ, सुरभि को साथ में लेके जाओ। सुरभि गाय भगवान की बहुत प्रिय है, हमारे यहाँ पर भी सुरभि गाय आ चुकी है, अभी सुरभि वर्षिप शुरू होगी। तो सुरभि गाय भगवान की बहुत प्रिय है, सुरभि को साथ में लेके जाओ, पर एक चीज का ध्यान रखना, सुरभि ने बोला कि अपने हाथी पर मत जाना, बिना हाथी के जाना कैरियर के, कोई ग्राउंड पहन के मत जाना, कोई चप्पल पहन के मत जाना, ऐसे ही जाना बिल्कुल विनम्र स्थिति में। जब ऐसे जाओगे तो कृष्ण तुम्हें क्षमा कर देंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, कृष्ण के सामने मत आना, कृष्ण के पीछे पीछे रहना, मतलब मेरे पीछे रहना, मैं कृष्ण से पहले बात करूंगी। तो कृष्ण क्या हुआ, कृष्ण गोविंद कुंड पर खड़े थे और कृष्ण देख रहे थे कि क्या क्या नुकसान हुआ है वहां पर। और कृष्ण जब देख रहे थे क्या क्या नुकसान हुआ है, तो कृष्ण ने उसी समय सुरभि गाय को देखा और सुरभि ने कृष्ण की स्तुति की और सुरभि कृष्ण से प्रार्थना की, देखो कृष्ण मेरे पीछे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो अपनी गलती के लिए पछता रहा है, बहुत उसे बहुत दुख है, उसने गलती की थी, वो बहुत भयभीत है, तो आप क्या कीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, जब तक आप उसे परमिशन नहीं देंगे तब तक बोलेगा नहीं। तो कृष्ण ने क्या कहा, ठीक है बोलो, क्योंकि इंद्र इतना घबराया हुआ था, उसने इतना बड़ा अपराध किया था। देखिए भक्तों के प्रति 6 प्रकार के अपराध बताए गए हैं, उसमें से सबसे बड़ा अपराध है भक्त की हत्या करना, और इंद्र ने भक्तों की हत्या करने की कोशिश की और उसे पता था कि कृष्ण बहुत क्रोधित होंगे, तो इंद्र बहुत घबराया हुआ था, तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सीधा आके उसने क्या किया, प्रणाम किया कृष्ण को। अब आप सुनिएगा कि कृष्ण कितने, देखिए अगर किसी से कोई गलती हो तो व्यक्ति कितना क्रोधित होता है, पर कृष्ण का हृदय देखेगा कि कृष्ण कितने सॉफ्ट हैं और कृष्ण किस भाषा में बात करते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं इंद्र को, कृष्ण कहते हैं ओ किंग ऑफ डेमिगॉड्स, हे देवताओं के राजा, आई सी दैट यू हैव अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन फॉर मी। हे देवताओं के राजा, मैं ये देखता हूं कि यू हैव अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन फॉर मी। अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन का मतलब है कि तुम्हारा जैसा प्रेम मेरे साथ और कोई नहीं कर सकता। यू हैव कम टू शो मर्सी टू मी, आप यहां पर आए हो मुझ पे कृपा करने के लिए। हु हैज ऑफेंडेड यू, जिसने तुम्हारे प्रति अपराध किया है, बाय स्टॉपिंग योर वर्शिप, तुम्हारा यज्ञ रोक कर। तो आप देखिए ये कृष्ण का हृदय है, कृष्ण बिल्कुल महसूस ही नहीं कर रहे कि उनके प्रति किसने अपराध किया है, और यही भगवान है जो फॉरगिव कर सके, माफ कर सके। तो जैसे ही इंद्र ने बात सुनी कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इंद्र और परेशान हो गया। इंद्र ने सोचा कि लगता है कृष्ण मजाक कर रहे हैं, कृष्ण बहुत गुस्से में है और शुरुआत मजाक में कर रहे हैं, अब ये मेरी क्लास लेंगे, अब ये मेरे को बहुत अच्छा लेसन देंगे। तो दरअसल ये नेचर होता है एक अहंकारी व्यक्ति का, जब वो अहंकार में होता है तो वो जैसे गुण उसके अंदर होते हैं वो सोचता है कि ऐसे गुण हर किसी में, अगर वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता तो उसे लगता है कि कोई मेरा सम्मान नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर अहंकार है तो उसको लगता है पूरे हर जगत में हर व्यक्ति में अहंकार है, तो ये एक अहंकारी व्यक्ति का लक्षण होता है। पर कृष्ण का स्वभाव देखिए, कृष्ण किसी के प्रति एनवियस नहीं है, नो एनवी, कोई एनवी नहीं है कृष्ण के प्रति, यही कृष्ण का क्षमाशील नेचर है। कृष्ण हर किसी को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। रूप गोस्वामी बता रहे हैं क्षमाशील की डेफिनेशन, रूप गोस्वामी बता रहे हैं अ पर्सन हु कैन टॉलरेट ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम द अपोजिट पार्टी इज नोन टू बी फॉरगिविंग। एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति जितने मर्जी अपराध क्यों ना करे उसके प्रति, उसे माफ कर दे, उसे कहते हैं फॉरगिविंग। क्योंकि कृष्ण क्या है, कृष्ण हर किसी के पिता है। कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं सभी का पिता हूं। अब देखिए माता पिता का अगर लक्षण देखिए कभी छोटा बच्चा होता है, अगर माता उसे गोद में उठाती है, बच्चा कभी कभी माता को मारता है बच्चा कभी कभी माता को, पर क्या माता बुरा मानती है उस बात का, कभी बुरा नहीं मानती। माता को खुशी होती है कि अच्छा है, कम से कम मेरे बच्चे में कुछ ऐसे गुण डेवलप हो रहे हैं कि अपनी रक्षा खुद कर पाएगा। जब एक बच्चा माता के गर्भ में होता है और कभी कभी बच्चा लात मारता है तो माता दुखी नहीं होती, माता खुश होती है, उसको लगता है कि सिम्टम्स है लाइफ के, वो प्रसन्न होती है उस बात पे। तो कृष्ण भी उसी प्रकार से कभी दुखी नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। कृष्ण अपने भक्तों के हर अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, बस कृष्ण ये देखते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ये मेरे पास वापस आ जाए। तो कृष्ण में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हम कृष्ण के भक्त हैं और हमारी भी यही जिम्मेदारी बनती है कि यही नेचर को हम अपने अंदर भी डेवलप करें, अपने अंदर भी उतारें इस स्वभाव को। एक बार बुद्ध के पास, लॉर्ड बुद्धा के पास एक व्यक्ति आया और उसने बहुत गलत गलत शब्द कहने शुरू किए बुद्ध को। तो जब वो व्यक्ति चले गया गलत शब्द बोलकर, तो शिष्य ने पूछा कि वो आपको इतने गलत शब्द बोल के क्या, आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। बुद्ध ने बताया कि मैंने दरअसल उसके किसी शब्दों को स्वीकार ही नहीं किया। फिर बुद्ध ने बताया कि मान लो आप ये कोई तोहफा लेके आता है, अगर आप उस तोहफे को स्वीकार ना करें तो उस तोहफे का क्या होगा। शिष्य ने बताया तोहफे का क्या होगा, वो व्यक्ति अपने साथ वापस ले जाएगा। तो कृष्ण बुद्ध ने बताया कि उसी प्रकार से अगर आपको कोई निंदा करता है, अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है, अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो उसी के पास वापस आ जाते हैं। तो भक्तों का भी यही स्वभाव होता है और भगवान का दरअसल यही स्वभाव है कि भगवान कभी क्रोधित नहीं होते, कभी अहंकार में नहीं होते और कभी किसी से द्वेष नहीं करते। हालांकि बद जीव का, क्योंकि हमारी स्थिति अगर देखें तो हमारी स्थिति इंद्र के समान है, हम एक ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी कर रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। हम भक्ति में भी आते हैं, कुछ भक्त लोग हमारी मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पर हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं भक्तों से द्वेष कर बैठते हैं, क्योंकि हमारी नजरों में सबसे बड़ा बाधा वही होते हैं। हमें लगता है ये हट जाएगा अगर मेरी आंखों के सामने से तो मैं ही टॉप मोस्ट हूँ, सबसे ऊपर मैं ही हूँ बस। तो जिसने हमें बनाया है हम उसी को ही मारने में लगे रहते हैं। तो ये बद जीव का लक्षण है, पर कृष्ण का स्वभाव ऐसा नहीं है। कृष्ण का स्वभाव बहुत ही कृपालु है। आप सोचिए, मान लीजिए आप खाते हैं, कभी कभी मान लीजिए आप खाते हैं और खाते खाते कभी कभी इन दांतों से हमारी जीभ कट जाती है, होता है कभी ऐसा, खाते खाते जीभ कट गई तो क्या करते हैं आप, गुस्से में आके हथौड़ा लेके दांत को तोड़ देते हैं, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप, इसे ध्यान रखते हैं बस, क्योंकि आपको पता है कि ये जीभ भी आपका अंश है और ये दांत भी आपका अंश है। उसी प्रकार से चाहे कोई द्वेषी व्यक्ति हो, चाहे कोई प्रेमी व्यक्ति हो, कृष्ण कभी किसी से द्वेष नहीं करते, क्योंकि कृष्ण ये समझते हैं कि मेरा ही तो अंश है, मेरा ही तो पुत्र है ये। कृष्ण इस प्रकार से हर किसी से प्रेम करते हैं। तो कृष्ण का ये जो क्षमाशील नेचर है, ये जो फॉरगिविंग नेचर है, दरअसल भक्त लोग इसका बहुत गुणगान करते हैं। यमुनाचार्य बताते हैं कि किस प्रकार से राम ने एक ऐसे कौवे के प्रति कृपा की। एक कौवा आया था, उस कौवे ने क्या किया, सीता माता के स्तनों पर चोंच मारने शुरू की। जैसे ही राम ने देखा, उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और कौवे ने देख लिया कि राम ने अपना धनुष उठा लिया, इसका मतलब मैं गया। उस कौवे ने तुरंत भगवान की शरण ले ली, राम की शरण ले ली और राम ने उसे माफ कर दिया। शिशुपाल ने इतने अपराध किए कृष्ण के प्रति, 100 अपराध, ऐसे अपराध कि एक अपराध में किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाए, इतनी गलत बातें, कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। तो ये कृष्ण का क्षमाशील नेचर है और कृष्ण इसी स्वभाव को अपने हर भक्त में देखना चाहते हैं। तपो तो कृष्ण यहां पर क्या बता रहे हैं इंद्र को, यू आर मोस्ट अफेक्शनेट टू मी, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, इंद्र को बता रहे हैं। जब इंद्र ने कृष्ण के स्वभाव को देखा तो इंद्र का हृदय पिघला और इंद्र ने दरअसल असलियत में भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की और इंद्र ने माफी मांगी, क्षमा मांगी। जैसे ही इंद्र ने क्षमा मांगी कृष्ण से, कृष्ण ने इंद्र से पूछा कि आप मेरे भक्त हो, आपके अंदर आपने ऐसा कैसे किया कि आप मेरे ही भक्तों को मारना चाहते हो। इंद्र ने बोला, देखिए कृष्ण, मुझमें प्राइड आ गया था, मुझमें अहंकार आ गया था, इसकी वजह से मैं अंधा हो गया था। कृष्ण का ठीक है, आपके अंदर अहंकार आ गया था, पर आपके अंदर बुद्धि तो है ना उस अहंकार से लड़ने के लिए, समझाने के लिए। तो इंद्र ने क्या बोला कि जो मेरा बुद्धि थी वो मेरे क्रोध की वजह से ढकी जा चुकी थी, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो वो पागल हो जाता है। कभी किसी क्रोधी व्यक्ति की किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपने होश में नहीं बोल रहा, बेहोश है उस समय। तो इंद्र ने यही बोला कि मैं उस समय इतना क्रोधित हो चुका था कि मैं सब कुछ भूल गया था। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो अहंकार है धन का, अहंकार है जो यश का, ये जो दंभ है हमारे अंदर, ये इतना इंटॉक्सिकेटेड है। जैसे तो बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा कोई नशा क्यों नहीं करता, उस नशे को अगर 100 गुना ज्यादा क्यों ना बढ़ा लिया जाए, जो अहंकार का नशा है, जो प्राइड का नशा है, उससे कई ज्यादा है। जब कृष्ण इंद्र को ये बातें बता रहे थे, तो हालांकि अब इंद्र समझ गए थे और इंद्र ने कृष्ण को शरणागत कर दिया था, परंतु इंद्र ने कृष्ण इंद्र को एक बात बोली, कृष्ण ने इंद्र को बोला कि देखो मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, और जब भी मेरे किसी भक्त का अहंकार बढ़ता है, मैं आता हूं उसके भक्त के अहंकार को खत्म करता हूं, उसको तोड़ता हूं, उस भक्त को दोबारा नीचे लेके आता हूं ताकि वो मेरी भक्ति कर सके, वो अपने पद से भ्रमित ना हो, मैं दोबारा उसको नीचे लेके आता हूं। और कृष्ण ने इंद्र को बताया कि देखो भविष्य में भी अगर तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारे अहंकार को तोड़ूंगा। क्योंकि कृष्ण को पता था भविष्य में भी जब वो परिजात पुष्प लेने के लिए जाएंगे तो इंद्र क्या करेगा, कृष्ण से लड़ाई करेगा, तो कृष्ण क्या इंद्र के अहंकार को फिर तोड़ेंगे। तो जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो सुरभि गाय जो वहां पर थी, सुरभि गाय यहां पर भी आ गई है, सुरभि गाय जो वहां पर थी, सुरभि गाय ने एक प्लान बनाया, क्योंकि सुरभि को बहुत दुख था। इंद्र ने कोशिश की थी गायों को मारने की, और सुरभि गाय ये सोच रही थी कि ये हमारी गायों को खत्म करना चाहता था, ऐसा लीडर हमें नहीं चाहिए। तो सुरभि गाय ने क्या किया, ब्रह्मा जी के साथ बैठकर एक योजना बनाई कि अब हम एक अभिषेक करेंगे और कृष्ण को बनाएंगे अपना राजा। तो जैसे ही सुरभि ने ये बात बोली, सभी देवता बहुत खुश हुए, वरुण और सारे जितने देवता है गंधर्व लोक से लोग आ गए, और उन्होंने नृत्य करना शुरू किया, गाना बजाना शुरू किया और कृष्ण का अभिषेक शुरू हुआ। और जानते हैं आप, कृष्ण को आज तक बहुत नामों से बुलाया जाता था, पर एक नाम कृष्ण को पहली बार दिया गया। आप जानते हो क्या नाम था, क्या नाम था वो, गोविंदा। तो अभिषेक शुरू हुआ और भक्तों ने कीर्तन शुरू किया, कृष्ण गोविंद गोविंद गो
Krishna Govinda.
बनाया प्लान कि आज के बाद केवल एक ही व्यक्ति की उपासना होगी, वो किसकी होगी? कृष्णा, केवल कृष्ण की उपासना होगी। तो ये जो दिन है आज का गोवर्धन पूजा, कृष्ण ने किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को उठाया था और किस प्रकार से गोवर्धन ने गिरिराज जी ने सभी को शरण दी थी, तो इस प्रकार से अगर हम भी गोवर्धन की शरण लेते हैं, क्योंकि गोवर्धन के दो रूप बताए गए हैं, हरि और हरिदास वर्य, कृष्ण और कृष्ण के भक्त, और गोवर्धन गिरिराज जी अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। तो हमें भी चाहिए कि गिरिराज जी की शरण लें, गोवर्धन की शरण लें, उनसे प्रार्थना करें आज के दिन कि बहुत लंबे समय से हम इस भौतिक संसार में हैं, बहुत लंबे समय से इस भौतिक संसार में हम लोग दुखों को सह रहे हैं, भोग रहे हैं, अब कम से कम यहाँ से हम बाहर निकल सके और आपको शरणागत कर सके। तो इसी मूड के साथ जैसे ब्रजवासियों ने गोवर्धन परिक्रमा बनाई, कृष्ण का गुणगान करते हुए, कृष्ण की परिक्रमा करते हुए यश गाया, गाय उन्होंने धूमधाम से इंजॉय किया सबने, तो हमें भी चाहिए कि अभी गोवर्धन परिक्रमा शुरू होगी और हम भी उसी प्रकार से धूमधाम से कृष्ण के यश को मनाएं, गोवर्धन परिक्रमा को मनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।